ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास तत जयमुदीरयेत्। नाष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंध सप्तम अध्याय दो श्लोक संख्या 56 और 57 दो श्लोक है इसमें। पहले 56 नंबर श्लोक को हम पढ़ेंगे। एवं कुलिंगो विलंपन्त महाराज एवं कुलिंगम, ये एक्चुअली लिखा नहीं है, एवं कुलिंगम विलंपन्त महाराज प्रिया वियोगो आतुरम अश्रुकंठम सैवोतम शाकुनिको शरेण विद्वायु काल प्रहितो विलीन। अनुवाद। अपने पत्नी की क्षति को कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदर्श का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलियों ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को वेद कर उसे मार डाला। अभी 57 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। एवं यूयम् अपश्यन्त आत्मपरायम् अबुद्धाय न एनम् प्राप्स्त शोचन्त पतिम् शत वर्षशते अपि। एवं उयम् अपश्यन्त आपायम् अबुद्धाय एवं उयम् अपश्यन्त आत्मयापायम् अबुद्धाय नायनं प्रापस्तो शोचन्त पति वर्ष शतेरपि। एवं उयम् अपश्यन्त आत्मयापायम् अबुद्धय नैनं प्रापस्त शोचन्त पति वर्ष शतेरपि। एवं उयम् अपश्यन्त आत्मयापायम् अबुद्धय नैनं प्रापस्थ शोचन्त प्रतिवर्ष शतेरपि। एवमुयं यपश्यन्त आत्मयापायम् अबुद्धय नायं प्राप्यस्त शोचन्त पतिं वर्ष शतेरपि। एवमयम् यपश्यन्त आत्मयपायम् अबुद्धय नायं प्रापस्त शोचन्त बुद्धिं वर्षशतेरपि एवमयम् यपश्यन्त आत्मयपायम् अबुद्धय नायं प्रापस्त शोचन्त पतिं वर्षशतेरपि एवमयम् यपश्यन्त आत्मयपायम् अबुद्धय नयनं प्रापस्त शोचन्त पतिं वर्षशतेरपि एवमयम् यपश्यन्त आत्मयपायम् अबुद्धय नायं प्रापस्त शोचन्त पतिं वर्षशतेरपि एवमयम् यपश्यन्त आत्मयपायम् अबुद्धय नयं प्रापस्त शोचन्तय पतिं वर्षशतेरपि
हर कोई अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की एवं इस प्रकार यम तुम सब अपश्यंतो ना देखकर आत्म अपायम आपने मृत्यु को अबुद्धयो हे मूर्खो ना नहीं एनम उसको प्रापस्थ प्राप्त करोगी शोचंतो शोक करती हुई पतिम अपने पति के लिए वर्षो शते सैकड़ों वर्षों तक अभी हुई। अनुवाद इस प्रकार छोटे बालक के वेश में जमराज ने सभी रानियों को बताया तुम सब इतने मूर्ख हो तुम शोक तो कर रही हो किंतु आपने मृत्यु को भी नहीं देख रही हो अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यो नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्ष तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य एक बार जमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा इस संसार में आश्चर्यमय वस्तु क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया महाभारत वानपर में है अहने यहने भूतानि गच्छन्ति ह जमालयम् शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम् यतो परम् लाखों वर जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु मूर्ख जीव तभी अपने को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु वही है प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है क्योंकि वह पूर्णतया प्रकृति के वश में होता है फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है वो जो चाहे सो कर सकता है और वो कभी मरेगा नहीं अभी तो सदा जीवित रहेगा। तथाकथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे किंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक जान ज्ञान में लगे रहते हैं तभी जमराज उन्हें उनके तथाकथित शोध कार्य से उठा ले जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं जना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथाम्बितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाम्बितांश च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नितानन्दनमस्तभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशय श्रीजाहं विपते नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिष्वे नमो पञ्चतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपीशगोपिककान्त राधाकान्त नमस्तुते ताप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। एवं उयम् अपश्यन्तो आत्मापायम् अबुद्धयो नैनं प्रापश्यन्तं पतिं वर्षशतेरपि। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में जमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतने मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्ष तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो अभी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती, आर तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में ऐसे बता रहे कि यहाँ पे रानियों शोक कर रहे किस लिए कि उनके पति के प्रति शारीरिक आसक्ति ये मुख्य नहीं है। उस समय प्रथा थे कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को सहमरण जाना पड़ता था, इस विषय में ज्यादा वो लोग चिंतित थे कि हमको भी मरना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा शोक कर रहे थे। तो वास्तविक यहाँ पे बता रहा है कि ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के तीसरा स्कंद से आ रहा है। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, उसके बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत में चले गए। अब तक इस प्रसंग बंद थे कुछ समय के लिए, फिर सप्तम स्कंद में प्रसंग आ रहा है। तो हिरण्यकशिपु तब गए थे हिरण्याक्ष के पूरा अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए। यहां भाई प्रसंग इस प्रकार आ रहा है कि परीक्षित महाराज को थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि दीति ने बताया कि भगवान विष्णु ने समदर्शी होते हुए भी देवता का प्रक्षपात किया है। तब परीक्षित महाराज को संदेह हुआ, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद को प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रसंग उससे पहले मैत्री विदुर संवाद में ये प्रसंग है। तो हम लोग अभी किससे सुन रहे हैं प्रसंग? ये जो वर्तमान प्रसंग हो रहा है हम किससे सुन रहा है? कि मैत्रेय विदुर के बाद नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, उसके पहले नारद मुनि ने बताए युधिष्ठिर महाराज को, हम अभी पढ़ रहे श्री राधाराज बलि भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर सुंदर की। तो उसके बाद ये प्रसंग हिरण्यकशिपु ने अपना भ्राता के पत्नी ऋषाभानु और सारे आत्मियों को, आत्मीय सज्जन को बता रहे कि देखो ये शरीर नश्वर है, शरीर कभी भी जा सकते हैं, शरीर के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्याक्ष इतने बड़ा बलवान थे कि वो गदा कंधे में धारण करके पूरा ब्रह्मांड में विचरण करने लगा, आओ मेरा साथ युद्ध करने के लिए। इंद्रियों को हरा दिए तो जल में प्रवेश किया, तब जल में प्रवेश किया तो वरुण देव का साथ वार्तालाप हुआ, तो वरुण देव को बोल रहे कि युद्धम देही। तो वरुण देव समझ में आया देखो कि मैं तो इसका साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं, ये बहुत बलवान राक्षस है, तो मैं बोल रहा हूं कि वरुण देव तब बता रहे कि तुम विष्णु के साथ युद्ध करो। तब हिरण्याक्ष विष्णु को ढूंढने लगे, विष्णु कहाँ है? और उस समय भगवान ने धरती को गर्भोदक सागर से उठा रहे थे। तभी हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव को भत्सना किए है, कई प्रकार का गाली के साथ कहा जाता है, आचार्य ने इसको स्तुति में बदल दिए है। जब भगवान पृथ्वी को अपने कक्षपथ में रखा उसके बाद हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष को भगवान वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष वध कर दिया तभी हिरण्याक्ष के पत्नी और सारे सज्जनों को, माता दीति को, हिरण्यकशिपु प्रसंग समझा रहा है कि देखो इस प्रकार हुआ था कि पुराकाल में एक राजा थे और राजा ने युद्ध में मारे गए, उनके वस्त्र बिखर गए, बाल बिखर गए, पूरा शरीर लथपथ है खून से, और रानियों ने शोक कर रहे, और रानी का शोक इतना प्रबल था, इतना जोर से क्रंदन कर रहे थे कि क्रंदन के शब्द को पता लोग जाम लोग तक तो जा रहे थे। जमराज वहां से आए कि जमराज इसलिए आए कि जब कोई जीव मर जाता है, खासतौर पर मनुष्य, तो उनकी आसक्ति रहता है उस शरीर के प्रति, और जब तक उस शरीर को जलाया नहीं जाता है तब तक उस जीव को दूसरा शरीर प्राप्त तो नहीं होता है। तब जमराज आए और एक बालक का वेश धारण करके आए, आके ये पत्नी को समझा रहे, और इस प्रसंग में अंतिम में उदाहरण दे रहा है दो पक्षी का कि एक बहेलिया जो जंगल में पक्षी पकड़ के हत्या करते थे और उसको खाते थे बहेलिया लोग, तो बहेलिया क्या सोचता था कि मैं ये पक्षी मारने का मेरा अधिकार है, ये जमराज ने मेरे को अधिकार दिया है। तो मूर्ख जीव सोचते कि जब वो कुछ कर्म करते हैं सोचते कि ये कर्म का मैं अधिकारी हूं, और उसी सोच के वो सोचता है कि मैं सारे पक्षी को मारने वाला हूं, मैं ये लोग का हत्या करने का मेरा अधिकार जमराज ने दिए है। तो वास्तविक आज के जो तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं वो भी यही सोचते हैं। तथागत विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे। तो वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि नया कार्य हो जो भगवान की सृष्टि में नहीं है। देखा जाता है आजकल के आज समय में भी बहुत सारे सब्जियां फूल होते हैं, तो वैज्ञानिक अपने आप को बहुत बड़े गर्वित मानते हैं कि देखो हमने इसने एक किया है। अब इस सीजन नहीं है फिर भी उस सब्जी मिलता है, फूल मिलता है। तो ये जो वैज्ञानिक है ये कितना स्वतंत्र है। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष के समय और हिरण्यकशिपु के समय जमीन में लांगल जोतने का आवश्यकता नहीं होता था। उस समय केवल खेत में जाके बो के आने से ही अपने आप सब्जी फल उगता था और इतना उगता था कि पर्याप्त है, मनुष्य खा के खत्म नहीं कर सकता था और बहुत स्वादिष्ट भी होता था, सुगंधित होते थे। और आज के विज्ञानी नाना प्रकार के केमिकल मिला के कुछ बनाते हैं, वो स्वादिष्ट भी नहीं होता है और सुगंधित भी नहीं होते हैं। फिर भी ये क्या सोचता है मैं बहुत कुछ किया हूं। तो जो वैज्ञानिक लोग है ये अपने आप को सोचता है मैं बहुत कुछ बनाया हूं। ये हिरण्यकशिपु तो नहीं बन सकते, ये लोग को छोटा हिरण्यकशिपु, मिनी हिरण्यकशिपु कहा जा सकता है जो वर्तमान मानव समाज को दूषित कर रहा है, भगवान के निर्देश को उल्लंघन करके अपने आप को बहुत महान समझ रहा है। वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि भगवान नहीं है, हिरण्यकशिपु बोल रहे थे कि भगवान नहीं, मैं भगवान हूं। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछा आज तक तुम विद्यालय में क्या अच्छा सीखा है, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम। बोले पुत्र तुम सब ठीक सीखे है मगर इसमें एक गलतियां है। क्या? श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु, क्योंकि मैं भगवान हूं। तो आधुनिक विज्ञानी लोग भी वही सोच रहा है मगर विज्ञानी सोचने से कुछ काम नहीं है। अभी वो लोग कुछ स्केल लगाया कि जहां पे भूकंप होगा मालूम पड़ेगा, जहां सुनामी होगा मालूम पड़ेगा, मगर कहां उसका स्केल लगाने में लाखों रुपया खर्चा कर रहा है मगर भूकंप जहां होता है वो हो रहा है, हजारों मनुष्य मर रहा है। तो वैज्ञानिक जो है ये लोग का धारणा किस प्रकार है, जैसा कि चावल का पाउडर होता है उसको अगर पानी में घोल दो जल में तो सफेद दिखता है, सोचता यही दूध है। तो वर्तमान वैज्ञानिक का परिस्थिति इस प्रकार है, क्या करता है वो इस प्रकार ज्ञान को लेके भगवान की समानता करना चाहता है। तो इस प्रकार एक उदाहरण है, एक अंधे व्यक्ति थे। अंधे व्यक्ति सुनते थे कि दूध सबसे बड़ा पुष्टिकर है, दूध पीने से शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, बुद्धि बढ़ता है। तो अंधे व्यक्ति ने पंडित के पास गए, पंडित को बताया कि पंडित जी दूध किस प्रकार है, कैसे है दूध। बोले दूध एकदम सफेद है। किस प्रकार सफेद? लेकिन इस प्रकार सफेद है एकदम बगुला जैसा। तो अंधे व्यक्ति ने बहुत प्रयास करके एक बगुला संग्रह किया है। अभी बगुला संग्रह किया तो बगुला संग्रह करके उसको हाथ से दिख रहा है, वो थोड़ा यहां पे थोड़ा टेढ़ा है, यहां पे थोड़ा चिकना है, यहां थोड़ा मोटा है, ये तो टेढ़ा है तो इसको कैसे खाया जाए, कैसे पिया जाए। तो अंधा क्या सोचता है, ये दूध नहीं पी सकते हम, क्यों, दूध टेढ़ा है, गला में लग जाएगा। और उस प्रकार वर्तमान विज्ञानी का परिस्थिति है। वो क्या सोचता है कि अभी इस बहुत सारे जो पौष्टिक फल वगैरह नहीं हो रहा है, इसको हम कृत्रिम उपाय से हाइब्रिड बनाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे, इससे 10 का काम एक में हो जाएगा और इससे मनुष्य को बहुत शरीर भी पुष्ट रहेगा। मगर इससे क्या होता है, वो कई चीज का संयोग करता है, क्रॉस बनाता है हाइब्रिड, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है। और हाइब्रिड बनने के बजाय क्या होता है, उसमें एक रोग प्रतिशोधक तो नहीं होता है, रोग संक्रामक कुछ वस्तु उसका अंदर घुस जाता है। जैसे कि इंजेक्शन देने से जो तरबूज है वो ज्यादा लाल दिखता है और मीठा भी लगता है, ऐसे प्रकार बनाए वैज्ञानिक। मगर उसका अंतिम में क्या फल है, अंतिम में क्या हो रहा है, उससे कैंसर हो रहा है। तो वर्तमान विज्ञानी का शोध कार्य इस प्रकार है कि वो कोई चीज आविष्कार करने में लगे रहते हैं और सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं। ये विज्ञानी इस प्रकार है, जैसा कि वो मटन शॉप होता है, मटन शॉप में एक बकरा को काट के लटका दिया गया और बाकी सारे बकरे आराम से घास खा रहा है। उसका कोई चिंता ही नहीं है कि उसका उस प्रकार चेतना ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि मैं कहीं मरने वाला हूं। समय आता है तो उसको भी काट कर लटका दिया जाता है। तो विज्ञानी उस प्रकार सोचता है कि हम तो नहीं मरेंगे, दूसरे को मरेंगे भी नहीं और दूसरे को ऐसा काम करेंगे ये लोग और जीवित रहे। उनका शोध कार्य में लगे रहता है, अपने मृत्यु को नहीं देखते। अपने मृत्यु को नहीं देखने के कारण क्या होता है, वो अपने शोध कार्य तो पूरा कर ही नहीं पाता है। ऐसा एक समय आता है उसका अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो शोध कार्य जो करते हैं भगवान के नियम के विरुद्ध। ये विज्ञानी लोग वास्तविक नए कुछ आविष्कार नहीं कर पाए, जो कुछ भी है उससे वो लोग रिसर्च कर रहा है कि मैं इसको कुछ और कुछ करूं। वास्तविक ये सिद्धांत भगवान के नियम के विरुद्ध है। जो ये वैज्ञानिक लोग भी छोटा हिरण्यकशिपु जैसा है, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये वास्तविक कौन है? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष क्यों असुरजनी प्राप्त हुए हैं? तो भगवान के वैकुंठ धाम में कहा जाता है कि 7 दरवाजा है, उसमें ये द्वारपाल लोग रहते हैं। जैसे द्वारपाल में नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्षेन गरुर जयंत सुतदेव पुष्पदंत ओ सुतवेद, ये 14 द्वारपाल, ये 14 द्वारपाल भगवान के वैकुंठ के 7 द्वार का रक्षा करते हैं। तो जब चतुष्कुमारों ने वैकुंठ में गए तो सभी द्वारपाल ने उनको रास्ता दे दिया। अंतिम द्वार में जय और विजय ने रास्ता रोक दिए। जय और विजय जब रास्ता रोके तब ये चतुष्कुमारों ने थोड़ा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि चतुष्कुमार वास्तविक उस समय भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, ये लोग निराकारवादी थे। जो शुद्ध भक्त है वो कभी क्रोधित होते ही नहीं, तो चतुष्कुमार क्रोधित हो गए, बोले वैकुंठ में तुम ईर्ष्या कर रहे हो तो वैकुंठ में रहने का अधिकारी नहीं हो, श्राप दे दिए, जाओ मर्त्यलोक में चले जाओ, राक्षस शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान तुरंत इस थोड़ा वार्तालाप मतलब तर्क वितर्क को सुन के बाहर आए। तो भगवान जब बाहर आए तो देखे कि महान संत आए हैं इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी का सृष्टि का पहला जीव लोक। तो भगवान ने आके माफी मांगे चतुष्कुमार से। और उस समय जैसे भगवान आए तो भगवान को चतुष्कुमार ने प्रणाम किया और भगवान के चरण के तुलसी से सुगंध से ये लोग पवित्र हो गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो भगवान जब माफी मांगे, क्योंकि कभी कभी अगर वृत्त नौकर कुछ गलती करता है तो मालिक के उसका कि विश्वास पात्र होता है ना, तो मालिक वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये लोग कुछ गलती किया था, वास्तविक ये गलती का पीछे भगवान के भी कुछ योजना थे। भगवान के योजना थे कि भगवान को अभी एक बार इच्छा हुई, मेरे को थोड़ा कुश्ती लड़ना है, कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे थे। तो माता लक्ष्मी बोल रहे, प्रभु आप बोलते आपकी पूरा सृष्टि के संहार करते हैं, कभी कभी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, मगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपका जो शरीर है ये तो बहुत नरम है, इस शरीर में कैसे आप युद्ध करते हैं, ये शरीर युद्ध का उपयुक्त नहीं है। बोले ठीक है, कभी देखना मैं कैसे युद्ध करता हूं। तो भगवान की इच्छा हुई, तो जब श्राप दिए जाओ मर्त्यलोक में जाओ, राक्षस शरीर प्राप्त होगी, दानव शरीर। तभी इन लोग ने चतुष्कुमार से बहुत प्रार्थना करने लगे। तो चतुष्कुमार ने बताया कि देखो, भगवान भी बोले कि श्राप दे दिया, श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, मगर इसका कुछ दिशा हो सकता है, इस दिशा को हम घुमाने से तुम्हारा श्राप का कुछ हद तक कम हो जाएगा। मगर ये जय और विजय ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हम अगर मर्त्यलोक में जाएंगे तो आपका विस्मरण हो जाएगा, मगर आप मैं हम किसी भी परिस्थिति में रहे आपका स्मरण सदा रहे। शास्त्र भी बताते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य तु ना जातु चित्त, सभी समय हमको भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और स्मरण अनुकूल भाव से होना चाहिए। तो यहां पे भगवान बता रहे कि आप किस प्रकार भाव से मेरा स्मरण करना चाहते हो। बोले हमेशा स्मरण करना चाहते, अगर अनुकूल भाव से मेरा स्मरण करना चाहते हो तो यहां लौटने में तुम्हें बहुत समय लगेगा, और प्रतिकूल भाव से स्मरण करना चाहते हो तो जल्दी लौट सकते हो। बोले कितना जल्दी, कम से कम 3 जन्म। तो भगवान उनको बताए कि 3 जन्म, तब इन्होंने इसी में राजी हो गया, चलो प्रतिकूल भाव से भी सही स्मरण करेंगे, क्योंकि ये जो मर्त लोग है यहां पे कष्ट ही कष्ट है, यहां पे कोई सुविधा नहीं है, देवता लोग इस भूलोक में आते भी नहीं, देखते भी नहीं भूलोक को। तो वो लोग सोचा ठीक है 3 जन्म ही, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को 3 जन्म लिए और भगवान ने 4 बार अवतार लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को संहार करने के लिए। उसमें पहला अवतार भगवान लिए वराहदेव का, जो हिरण्याक्ष को मारे, और हिरण्याक्ष को जब मृत्यु हुई तब हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या किए। कहा जाता है कि आज तक इस संसार में सबसे बड़ा कठोर तपस्वी हिरण्यकशिपु है, उसके बड़ा कठोर तपस्वी कोई नहीं किया। इतना साल तक एक अंगूठे में मंदार पर्वत में खड़े होकर तपस्या किए। तो हिरण्यकशिपु इस प्रकार जो राक्षस लोग होते हैं वो अपना बुद्धि इस प्रकार लगाते हैं, बहुत घुमाते हैं, साधु जो होता है सरल होता है, राक्षस का भी सरल नहीं होता है। साधु का वैशिष्ट है कि सरल पथ में चलना और सहनशीलता होता है, राक्षस को ना सहनशीलता होता है ना सरल होता है, कुटिल होता है। तब ब्रह्मा जी जब आए तब वो बोले कि हम अमर वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए, अमर तो मैं ही नहीं हूं, मैं कैसे अमर वर दे सकता हूं। बोले ठीक है हम दिन में नहीं मरेंगे। बोले ठीक है तथास्तु, रात में नहीं मरेंगे तथास्तु, जल में नहीं मरेंगे तथास्तु, स्थल में नहीं मरेंगे तथास्तु। कि हिरण्याक्ष जो जल में मर गया था, सोचे मैं जल में ना मरूं। सारे वरदान जब प्राप्त कर लिया तो हिरण्याक्ष भी सोचा कि मैं तो अमर हो गया, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं है। तो वर्तमान वैज्ञानिक भी सोचता है कि हम लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, हम कुछ नया किया है। तो भगवान ने फिर अपना नरसिंह अवतार लिए, नरसिंह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप को उद्धार किया। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण को भगवान श्री रामचंद्र मारे और दंतवक्र शिशुपाल को भगवान कृष्ण स्वयं आए थे। तो ये जो है यहां पे बता रहे कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है। और हिरण्यकश्यप को मालूम था कि ब्रह्मा जी को भी शरीर अंत होता है, फिर भी सोचता था कि नहीं हम अमर बनेंगे। ये तथाकथित मनुष्य का इस प्रकार परिस्थिति है, किसी को बोला जाए देखो आप तो अभी आपका शरीर का जीवन का आधा चले गए, आप अभी भगवान के भजन में लग जाए। बोले नहीं नहीं, जब भी इसको पुकारा जाता कि आधा चले गए तो एक झटका लग जाता उनको। बोले हाँ अभी तो हमारा 30 साल ही हुआ है। ये मनुष्य का एक बहुत बड़ा रोग है, मनुष्य समझ नहीं पाते। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझते हैं, मगर ये समझ नहीं पाते कि हमारा मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु निश्चित होने का कारण हमको क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या होना चाहिए। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इनको तो वरदान था 3 बार मरने के बाद भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, और हमारा क्या स्थिति है? कोई बोल सकते कि हम इस बार मरने के बाद भगवान के धाम जाएंगे? कभी नहीं, कि हमारा कोई निश्चित समय ही नहीं है। हम कितना वर्ष तक इस जड़ जगत में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ग्रस्त हो रहा है, फिर भी हमारा ये ध्यान नहीं है कि हमको इस शरीर हमारा अंत है। हम कभी समझ नहीं पाते, हम इसलिए समझ में नहीं पाते क्योंकि हम भगवान के निर्देश को बराबर पालन नहीं करते। यहां पे बता रहा है कि देवता लोग भी इस भूलोक में नहीं आते हैं, मगर वर्तमान जो परिस्थिति है ये भूलोक जो है ये देवलोक से भी श्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि ये भारत भूमि तो हई लो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करो करो पर उपकार। क्योंकि भारत भूमि इसमें केवल मुक्ति ही नहीं कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर सकते जीवात्मा, और इस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का समय 500 साल से 10,000 साल तक, 500 साल बीत गए हैं और कुछ 10,000 साल तक इसका समय है। इस समय में कोई भी मनुष्य अगर भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन और विशेष करके भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ठीक से करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल नाम उच्चारण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि ये नाम है कलिजुग के लिए महा औषधि। एने छी औषधि माया औषधि बारे लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम मागी। ये महा औषधि है, हमारे आचार्य बताते कि हमारे भव रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त होने के लिए केवल औषधि नहीं है, महा औषधि है। महा औषधि हम अगर उस प्रकार विश्वास के साथ और संदेह ना करके शुद्ध भाव से उच्चारण करेंगे तो हमारे जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, से हम इसी शरीर में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। भगवान के धाम वापस जाना मनुष्य का उद्देश्य है। नते विदुषार्थ गतिम हि विष्णु दुराश जबहिरर्थ मानिना अंधा यथा अंधे रूपनियमाना ते अपि स्वतंत्राम उरुद्धानि बद्धा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है विष्णु को प्राप्त करना। हम अगर ये उद्देश्य को छोड़ के कोई वैज्ञानिक शोध कार्य के उद्देश्य में कि अपने आप को कोई भौतिक उपाधि का पीछे भागेंगे तो हमारा परिस्थिति क्या है? अंधा तथा अंधे रूप ने माना, हम अंधे है और दूसरे अंधे को पकड़ के चल रहा है। तो हमारे ये सारे सब छोड़ के केवल वास्तविक उद्देश्य है, हम जो कुछ भी कर रहा है उसके साथ हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार भगवान की सेवा अच्छे से किया जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर में हम केवल भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, बाकी शरीर में है सेवा, इस प्रकार सेवा नहीं कर सकते जो मनुष्य शरीर में हम कर सकते, कि मनुष्य शरीर हमारा मिला है, इस शरीर पाने के लिए हम लोग कुछ प्रयास नहीं किया, भगवान की अशेष कृपा से हमको मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर मिला तो मिला, कलियुग में प्रथम संध्यायो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद और उसके ही बाद के महान आचार्य प्रभुपाद जी के सान्निध्य में ये हमारे मनुष्य शरीर, कि हम प्रभुपाद जी के जैसा महान भक्तों के शरण में रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको भी लेते हैं थोड़ा बाहर का भी लेता है, उनका परिस्थिति क्या है, वो आधा ना हिरण्याक्ष बन पाता है हिरण्यकशिपु ना भक्त बन पाता है, सोचता है ये स्थिति में थोड़ा हम आगे जाएंगे, वास्तविक होते नहीं हो, और बीच में जाके त्रिशंकु जैसा लटक जाता है। तो हमारे आश्चर्य वस्तु यह है कि हमारे इस वर्तमान कलियुग में और चैतन्य महाप्रभु आने के बाद इस परंपरा में हम लोग जुड़ गए हैं, ये सबसे आश्चर्य। ये आश्चर्य यह है कि प्रभुपाद जी को पूछा गया था आपका क्या मिराकल किया है, तो प्रभुपाद जी बोला कि मैं कुछ नहीं किया, मैं हिपी लोगों को वैष्णव बनाया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो उस प्रकार हमारा जीवन का भी आश्चर्य है, हम लोग इसके पहले किस परिस्थिति में था, हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखे उस परिस्थिति से हम आज इस परिस्थिति में आए हैं। इस परिस्थिति में आए कि हम अपने आप को भगवान के सेवक रूप में बता पा रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। तो सेवा हमको उस प्रकार करना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से, भजन तो सब लोग करते हैं। एक जगह मैं गया था, बोले हाँ महाराज हमारा भजन चालू है, भजन चालू है, हमेशा भजन होता है। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया था, प्रभुपाद जी भजन और भक्ति में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जी बता रहे कि हाँ, धन संपत्ति घर आवे जाए जगदीश हरे, इसको आप भजन बोल सकते मगर भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरोत्तमा। तो इस प्रकार अगर भक्ति कराया जाए तो मनुष्य जीवन सार्थक है। बाकी जो है वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम बहुत सारे पहले किया भी है शायद, तभी हम इस प्रकार से आए हैं। तो कुछ इच्छा के बिना केवल भगवान की सेवा हम किस प्रकार कर सकते, ये हमारा इच्छा होना चाहिए। इसी इच्छा से हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमारा क्या परिस्थिति होगा? पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठर शयनम, बार बार हम जन्म मृत्यु चक्र में फंसते रहेंगे। और काव्या में हिरण्यकशिपु के नहीं तो बन सकते, उनका शायद छोटा मोटा दास बन सकते हैं और कभी और कुछ बन सकता है। तो हमको ये सब छोड़ के भगवान की भक्ति उस प्रकार करना चाहिए कि यही हम सोचना चाहिए कि आज की जो हम हरे कृष्ण मंत्र अभी जप कर रहे हैं यही हमारा अंतिम जप है, ये दर्शन मेरा अंतिम दर्शन है। इस प्रकार भाव से हम अगर भगवान की सेवा करेंगे दर्शन श्रवणम, तो हमारा जीवन का कुछ उद्देश्य हो सकता है। बाकी तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका कुछ महत्व नहीं होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई सुधार? श्रीमद् भागवतम की जगद्गुरुश्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की नितय गौर प्रेमानंदे।